मुझे एक कवि का एक वाक्य याद आया, जिसके पास और कुछ गिनने के लिए नहीं होता वो अपने वर्ष ही गिना करता है। क्या जयप्रकाश उन मनुष्यों में से हैं जिनके वर्ष ही गिनने चाहिए? 75 साल के हो गए, कौन सा बड़ा पराक्रम किया? मैं तो उनसे 3-4 साल बड़ा हूं। काकोपि जीवति चिरं चिराय बलिं च भूमते। कौआ बलिदान का भात खाकर कई वर्ष जीता रहता है। मित्रों, हम जयप्रकाश की उम्र के वर्ष गिनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। शंकराचार्य ने कहा है, काल क्रीडति गच्छत्यायु। काल का खेल होता है, हमारी जान जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कालातीत होते हैं, उनके शरीर में बाल्यावस्था कौमार्यम यौवनम जरा इनमें से कोई अवस्था नहीं होती, जिनका सतत विकास ही होता चला जाता है। बहुत साल पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी, द आउटसाइडर। कुछ व्यक्ति इतिहास, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संस्कारों से परे होते हैं। ऐसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं लेकिन जरा उनको नहीं छूती, क्षीण नहीं होते, उनका जीवन क्षीण कभी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में से जयप्रकाश हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय इतिहास की एक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। उस परंपरा के आरंभ का विचार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस परंपरा को प्रस्थापित करा किया और सजीव उसकी प्राण प्रतिष्ठा की लोकमान्य तिलक ने। भगवद गीता रहस्य लिखा और उसे किसे समर्पित किया जाए, ईश्वर के किस स्वरूप को समर्पित किया जाए? विष्णु को समर्पित करूं, शिव को समर्पित करूं या राम को समर्पित करूं? धनुर्धारी राम, श्मशानवासी गिरिजापति या चक्रधारी सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, इनमें से किसको मैं समर्पित करूं? मंडले के जेल में गीता रहस्य लिखा था, समर्पित किसे किया? समर्पये ग्रंथमिमं श्रीशाय जनतात्मने। यह ग्रंथ मैं समर्पित करता हूं श्री विष्णु भगवान को, लेकिन किस रूप को? जनतात्मने, भगवान के जनतात्मा के रूप को समर्पित करता हूं। जनतात्मा का आवाहन किया, जनतात्मा की उपासना की, जनतात्मा में ही अपनी सारी निष्ठा समर्पित की। इसलिए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बने, हमारे देश के प्रथम लोकमान्य। जनशक्ति का, लोक शक्ति का आवाहन किया। राज्य शक्ति के मुकाबले में लोक शक्ति को उपस्थित करने की चेष्टा की। मैं इसे लोकमान्य तिलक की विशेषता मानता हूँ। हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए उनका ये विशेष योगदान है। वो किसी के प्रतिनिधि नहीं थे, चुनाव में तो खड़े हुए थे, लेकिन लोकमान्य बनने से पहले, लोकमान्य जब बने तब से वो कभी चुनाव में खड़े नहीं हुए। मैं छोटा था, नागपुर में आए थे, तो सब लड़कों से कहा, जैसे कोई महापुरुष आता है तो लड़कों से कहा जाता है सवाल पूछो, और लड़के घबराते रहते हैं। मैं भी घबराया, लेकिन स्कूल में बहुत बकझक करता था, इसलिए मेरे मित्र मुझे चिढ़ाने लगे कि अब क्यों चुप हो गया है, सवाल क्यों नहीं पूछता है। तो मैंने कहा सवाल तो क्या पूछूं, ये लोकमान्य हैं, इनसे सवाल क्या पूछ सकता हूं मैं। मैंने सवाल पूछा, लोकमान्य बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकमान्य लोकमान्य ही थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया, लोकमान्य बनने की इच्छा छोड़नी चाहिए। अब यह उत्तर तो लोकमान्य ही दे सकते थे, कोई अभ्यर्थी नहीं होगा, कोई प्रत्याशी नहीं होगा, कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कोई उम्मीदवार नहीं होगा, तब वो लोकमान्य बनेगा। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। सिंह का कोई जंगल में कॉरोनेशन नहीं होता है, अभिषेक नहीं होता है, संस्कार नहीं होता है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। विक्रमार्जित सत्वस्य, अपने विक्रम के कारण जो सत्व उसके व्यक्तित्व में आता है, उसके कारण स्वयमेव मृगेन्द्रता, वो सारे जानवरों का राजा बन जाता है। यहाँ राजा नहीं, नेता भी नहीं, उनका प्रतिनिधि बनता है। प्रतिनिधि अनभिषिक्त, जिसका अभिषेक नहीं हुआ है, निर्वाचन नहीं हुआ है। ये परंपरा हमारे देश में लोकमान्य तिलक ने कायम की। लोकमान्य के उत्तराधिकारी गांधी थे। गांधी के विषय में ये माना जाता है कि लोकमान्य के प्रतिपक्षी थे, प्रतिस्पर्धी थे, लोकमान्य के अनुयायी नहीं थे। अनुयायी तो थे ही नहीं, परंतु उत्तराधिकारी थे। 1920 में जिस दिन लोकमान्य का देहांत हुआ, उसी दिन गांधी के असहयोग का आविर्भाव हुआ। हमारे राष्ट्रीय जीवन के इतिहास में यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। मित्रों, इसके पीछे भी कोई योजना रही होगी, हम नहीं जानते किसकी रही होगी। हम ये मानते हैं कि विश्व नियंता परमात्मा की रही होगी, लेकिन ये घटना एक संयोग की घटना अवश्य थी। एक तत्वज्ञानी ने लिखा है, संयोग चांस किसे कहते हैं। हमारे साहित्य बहुत से उपनाम ले लिया करते हैं, तो भगवान भी कभी कभी तखल्लुस पेट नेम उपनाम ले लेता है। चांस इज द स्यूडोनिम विच गॉड अस्यूम्स विच ही व्हेन ही डज नॉट वांट टू साइन। ईश्वर को जब अपनी हस्ताक्षर दस्तखत सही नहीं करनी होती है तो वो अपने को संयोग कहता है। इस तरह की यह संयोग की घटना है। गोखले और तिलक दोनों का उत्तराधिकारी गांधी था, लेकिन वो सर्वेंट ऑफ इंडिया का सदस्य नहीं बन सका और लोकमान्य तिलक के जो अनुयायी थे उनकी मंडली में भी नहीं बैठ सका। उन्होंने उसका विरोध किया। शिष्य, अनुयायी और उत्तराधिकारी में यह अंतर होता है। उत्तराधिकारी लीक नहीं पीटता, पुराने रास्तों पर नहीं चलता, दिशा जानता है, मकसद मुकाम जानता है, वहां पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजता है, नई पगडंडियां बनाता है। यह उत्तराधिकारी का पराक्रम होता है। गांधी ने लोकमान्य तिलक के दिशा को समझ लिया कि लोकात्मा का आवाहन करना है, लोकात्मा को जागृत करना है और इस देश के साधारण नागरिक में पुरुषार्थ की प्रेरणा बढ़ानी है। निर्माण नहीं करनी है, उत्पन्न नहीं करनी है। मित्रों, उत्पन्न कोई कर ही नहीं सकता, जो सुप्त होती है उसको जगा सकता है। लोकमान्य को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने कहा, गलत है, द वॉइस ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हमारे देश में जो असंतोष था उस असंतोष को मुखरित किया। गांधी उसके उत्तराधिकारी के रूप में आए और लोकमान्य के मार्ग को प्रशस्त किया, लोक सुलभ बनाया। गांधी के वक्त इस देश की क्या स्थिति थी? भूखा देश था, निहत्था देश था, निराश देश था, हताश था, हतवीर्य था। ऐसे देश में पराक्रम की प्रेरणा जागृत करनी थी, भूख में से शक्ति पैदा करनी थी, निशस्त्र स्थिति में से पुरुषार्थ पैदा करना था। वो दिव्य दृष्टि लेकर गांधी आया, आउटसाइडर, कोई तर्क नहीं किया कि हम निशस्त्र देश है, निहत्थों का देश है, निराश देश है, हतवीर्यों का लोगों का देश है, इसमें से कैसे पुरुषार्थ का निर्माण करूं? नहीं, ये सवाल ही उसके सामने नहीं आया। कैसे करूं, सवाल ही नहीं आया, करना है, और अपने अनुभव से आगे चला। लोकमान्य तिलक और गोखले एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, लेकिन गोखले ने कहा कि मैं राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों को दाखिल करूंगा। प्रतिज्ञा गोखले की थी, संकल्प गोखले का था। और लोकमान्य तिलक ने कहा, इस देश के साधारण मनुष्यों को जागृत करूंगा। दोनों की परंपरा, दोनों के संकल्प का उत्तराधिकारी गांधी आया। उसने लोगों में, मैं समझता हूं कि गांधी फर्स्ट जेंटलमैन इन पॉलिटिक्स, कोई सौजन्य लाया हो राजनीति में तो गांधी लाया, गोखले का उत्तराधिकारी, और सारे देश को जागृत कर दिया, जगा दिया। कैसा अद्भुत दृश्य था, जिस देश, जिस दृश्य के हम सब साक्षी थे। चुनाव हुए, लोगों से कहा कि इन चुनावों में हमको हिस्सा नहीं लेना है, तो क्या चुनाव हुए? कहीं 1% मतदान हुआ, कहीं 0.5% मतदान हुआ, कहीं 5% मतदान हुआ। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य गांधी से पहले किसी ने नहीं दिखाया था। लोकमान्य ने बहिष्कार कहा, गांधी ने कहा असहयोग। इसी परंपरा में से उसके गांधी के बाद विनोबा आया। प्रकृति से भिन्न, व्यक्तित्व से भिन्न, भूमिका भी भिन्न, लेकिन उत्तराधिकारी था। मैं सहयोगात्मक क्रांति कराऊंगा, समाज परिवर्तन होगा मनुष्यों के सहयोग से। अभूतपूर्व प्रयोग था, दुनिया के इतिहास में किसी ने ऐसा साहस नहीं किया था। गांधी को लोगों ने पहले तो मूर्ख कहा ही, उसके बाद विनोबा को मूर्ख तर कहा। गांधी के बारे में लॉर्ड रीडिंग ने कहा था, इट्स द मोस्ट फूलिश ऑफ ऑल फूलिश स्कीम्स। दुनिया में जितनी मूर्खता की योजनाएं हो सकती हैं, उतनी उससे उनसे अधिक मूर्खता की योजना गांधी की है। और मुंबई का उस वक्त का जो गवर्नर था सर जॉर्ज लॉयड, उसने लिखा, गांधी वॉज विद इन एन इंच ऑफ सक्सेस। ये आदमी सफलता के बहुत नजदीक पहुंच गया था, थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो ये मूर्खतापूर्ण योजना सफलता तक पहुंच चुकी थी। एक से एक बढ़कर मूर्ख आए। ये मूर्खों की परंपरा है ना, वो साइमन बॉलिवर ने कहा था ना कि दुनिया में तीन महामूर्ख हुए हैं, एक जीसस क्राइस्ट, दूसरा डॉन क्विक्सोट और तीसरा माइसेल, यानी वो साइमन बॉलिवर। तो ये पराक्रमी मूर्खों की परंपरा, यानी जो वर्ल्डली वाइज नहीं थे। मित्रों, हमारा देश कहलाता है आध्यात्मिक देश, लेकिन इसके बारे में बड़ी पते की बात रॉय ने कही थी कि ये देश आध्यात्मिक नहीं है। Our country is a country of spiritual immaterialism। यहां पर आध्यात्मिक अवास्तविकता है, आध्यात्मिक अवस्तुवाद है, परलोकवाद है, अध्यात्म नहीं है। ऐसे देश में विनोबा ने प्रयोग किया सहयोगात्मक क्रांति का। लोग कहते हैं विनोबा असफल हुआ। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह मानता हूं कि विनोबा के साथ असफल होना भी दूसरों के साथ सफल होने से कहीं अधिक उदात्त और दिव्यतर है। उसके बाद जय प्रकाश आए विनोबा के उत्तराधिकारी के रूप में। हमारा एक अधिवेशन हुआ था मुंबई में, हमारे मित्र आचार्य राममूर्ति से लोगों ने कहा, सोशलिस्टों ने, कि बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारा जय प्रकाश हमें लौटा दिया। तो आचार्य राममूर्ति बड़ी सूझबूझ के आदमी हैं, उन्होंने कहा हाँ लौटाया तो, लेकिन वो जय प्रकाश नहीं है जो हमने लिया था। कैसे तुम कहते हो? उन्हें हमने दो काम किए हैं, एक तो हमने जो जय प्रकाश लिया था उसकी लाल टोपी उतार ली, ये पहली बात हुई। और दूसरी, हमने जो जय प्रकाश लिया था वो समाजवादी नेता था, अब जो जय प्रकाश है वो लोकनायक जय प्रकाश है। ये लोकनायक जय प्रकाश विनोबा के उस सहयोगात्मक क्रांति के आंदोलन में से आविर्भूत हुआ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक परंपरा का ये उत्तराधिकारी है, और इसीलिए इस देश में एक अभूतपूर्व लोक जागरण जय प्रकाश उपस्थित कर सका। जिस वक्त हम समझते थे कि देश मृतक की स्थिति में है, अब यह कभी नहीं जागेगा, इस देश की नाड़ियों में कोई अब शक्ति नहीं रह गई है, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने लिखा था, आमचा देशाला काही झालेले नाही त्याची नाड़ी अगदी साफ चालते। हमारे देश को कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी नाड़ी बहुत साफ चल रही है। जय प्रकाश जैसे लोक नेताओं को देश की नाड़ी का ज्ञान होता है, जो साधारण नेताओं को नहीं होता। साधारण मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति का उनको दर्शन होता है और उस शक्ति का आवाहन निष्ठा के साथ वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये आउटसाइडर है, ये हमारी समाज व्यवस्था, हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों से भिन्न ये व्यक्ति होते हैं, ये किसी के अनुयायी नहीं होते, उत्तराधिकारी होते हैं। ये ऐतिहासिक परंपरा में इनका स्थान उत्तराधिकारी का है, अनुयायियों का नहीं। अनुयायी वो होते हैं जो अपने गुरु या नेता का सिर्फ उत्तर क्रिया ही करते हैं। दूसरा अधिकार लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया जो करते हैं वो अनुयायी होते हैं, उत्तराधिकारी पिंडोदक का अधिकारी नहीं होता, वो आगे जाता है उसी दिशा में। जय प्रकाश के बाद इस देश में एक मिनी रिवॉल्यूशन, एक अल्प क्रांति हुई। वो अल्प क्रांति इसलिए कहलाई मित्रों कि कभी यह आशा नहीं की जाती थी कि पार्लियामेंट्री पद्धति से क्रांति की भूमिका पैदा हो सकती है। क्रांति के लिए जमीन पार्लियामेंट्री पद्धति से निर्माण की जा सकती है, यह विचार दुनिया में लुप्त हो गया था। इस देश में यह चमत्कार हुआ कि एक मिनी रिवॉल्यूशन, लोगों का सत्व जिसमें पैसा, जाति, डंडा किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। लोग मुझसे कहते हैं और मैं मानता भी हूँ कि ये कुटुंब नियोजन में इतनी ज्यादतियाँ नहीं होती तो लोग इतने जागृत नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादतियों के बाद जागृत क्यों हुए? इसलिए हुए कि वो समझ रहे कि अब हमारे लिए स्वतंत्र रीति से जीना असंभव है, हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते, हमारा जीवन स्वायत्त नहीं है। ये चीज उनके हृदय को छू गई, इसलिए वो जागृत हो गए। और मैं इसके लिए इंदिरा जी को धन्यवाद देता हूं कि न इमरजेंसी आती और न ये जनता जागती। न जलियांवाला बाग हुआ होता और न हमारे देश में स्वराज्य का आंदोलन पनपता। इमरजेंसी आई इसलिए इस देश के साधारण नागरिक में चेतना पैदा हुई। तो इमरजेंसी यानी इंदिरा जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और भी धन्यवाद मैं देता हूँ, ये मैं कोई विनोद में नहीं दे रहा हूँ, आयरोनिकली भी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर चुनाव नहीं कराती तब भी क्या होता, उनको बुद्धि हुई कि चुनाव कराएं, क्यों हुई, कैसे हुई, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे सोशलिस्टों ने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई है कि इंटेंशन नहीं, रोल देखो, रोल उसकी नियत मत देखो, भूमिका देखो। तो इंदिरा जी की भूमिका हमारे लिए इसमें बड़ी अनुकूल रही कि चुनाव उन्होंने कराए और इस देश में एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया, देश में जमीन तैयार हो गई, क्रांति के लिए जमीन तैयार हुई, लेकिन वातावरण अभी नहीं बना है। वो वातावरण हमको बनाना है, इसके लिए हम जनता पार्टी की सरकार की तरफ न देखें। जनता पार्टी की सरकार का पुरुषार्थ इतना ही था और इतना ही हो सकता था कि हमारी गई हुई आज़ादी वो हमको लौटा दे, वो उसने लौटा दी। अब आगे क्या चल रहा है, मजे की बात है, एक दफा दो मैजिस्ट्रेट साइकिल पर विदाउट लाइट चले जा रहे थे, दो मैजिस्ट्रेट थे, पुलिस वाले ने हटका, कहा कि आप तो विदाउट लाइट चल रहे हैं, कौन है आप, नाम लिखा है, दोनों मैजिस्ट्रेट। तो दूसरे दिन उनको अदालत में पेश होना था, दोनों मैजिस्ट्रेट थे, गए घर गए और आपस में सलाह की कि कल ऐसा करेंगे मेरा मामला तेरे सामने चले और तेरा मामला मेरे सामने चले, ऐसे आपस में सलाह कर ली। दूसरे दिन अदालत में पहुंचे, पहला मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा तो उसने कहा आप विदाउट लाइट चल रहे साइकिल चला रहे थे? जी हाँ। आपको मालूम है यह गुनाह है? जी हाँ। ठीक है, एक रुपया जुर्माना, और रुपया मजिस्ट्रेट ने ही निकाल कर रख दिया। अब इसकी बारी आई, ये बैठा, कोई सवाल पूछे, इसने कहा 10 रुपया जुर्माना। क्यों रे भाई, हमारी तुम्हारी तो सलाह हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, ये गुनाह बहुत गंभीर है, दिस इज द सेकेंड ऑफेंस ऑन द सेम डे एंड कमिटेड बाय अ मजिस्ट्रेट। एक दिन में ये दूसरा गुनाह हुआ है और करने वाला मजिस्ट्रेट है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स ए डिटरेंट सेंटेंस। इसलिए इसको सजा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा ये गुनाह ना हो। तो ये राज्य यही करते रहेंगे, ये हमारा नागरिकों का धंधा नहीं है। मित्रों, इमरजेंसी गई, इंक्वायरी आई, नागरिक जहां के तहीं है। जितने लोग आज सवेरे से मुझे मिले, हर कहते थे कि हम शामिल हो गए थे, बड़े जोश से सभाओं में जाते थे चुनाव के वक्त, लेकिन अब जाना छोड़ दिया है। क्यों? वो हवा नहीं रही। 6 महीने में जो देखा, क्या देखा? सरकार को देखा। आज की बीमारी आप जानते हैं, आज की बीमारी ये वैश्विक बीमारी है, जागतिक बीमारी है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्टेट, राज्य संस्था का अति विस्तार। हमारे जीवन के हर तफसील में राज्य राज्य आज छा गया है। ईश्वर के बाद अब राज्य ही है। हम अपनी जीवन के लिए जैसे ईश्वर को जिम्मेवार मानते हैं, वैसे अब राज्य को मानने लगे। मित्रों, ये लोकतंत्र नहीं है, ये स्टेटिज्म है, वेलफेयरिज्म, स्टेटिज्म इल डिस्गाइज्ड, जिसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, भेष कल्याणकारी राज्य का है, लेकिन असल में स्टेटिज्म है, राज्यवाद है। राज्यवाद से अगर हमको बचना है तो हम आदर करें। ये भी मैं आपसे कह दूं कि जनता सरकार के सिवा आज हमारे लिए कोई दूसरा आशा का स्थान नहीं है। अगर ये जनता सरकार सफल नहीं होती तो इस देश का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन अगर ये सफल नहीं होती तो जिम्मेवारी नागरिक की है। नागरिक ने उन्हें जानबूझकर विचार पूर्वक बैठाया है। अब मैं भी जिम्मेवार हूं। जनता पार्टी जो कुछ करती है या नहीं करती है, उसके लिए केवल वो सरकार जिम्मेवार नहीं है, इस देश का नागरिक जिम्मेवार है। मित्रों, सरकार जिम्मेवार हो और नागरिक गैर जिम्मेवार हो तो अंधेर नगरी होगी। गैर जिम्मेवार नागरिक का प्रतिनिधि जिम्मेवार हो सकता है कभी? लेकिन हमारे देश के नागरिक ने 2 संकल्प कर लिए हैं, परलोक के लिए जिम्मेवार ईश्वर है, इहलोक के लिए जिम्मेवार सरकार, और इन 2 के 2 प्रतिनिधि हैं। परलोक में ईश्वर का प्रतिनिधि है यमराज, और इहलोक में राजा का प्रतिनिधि है सिपाही। लोकतंत्र में राज्य का अधिष्ठाता सिपाही नहीं होता, नागरिक होता है। वो सॉवरेन है, पॉलिटिकल सॉवरेन, एक्चुअल सॉवरेन, प्रत्यक्ष अंतिम सत्ता नागरिक की है। संविधान के दिए हुए जो अधिकार हैं, इनके अतिरिक्त जो अधिकार है वो नागरिक के हैं। संविधान के अधिकार तो नागरिक के दिए हुए हैं। नागरिक संविधान से बड़ा है, श्रेष्ठ है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, लेकिन नागरिक एक्चुअली सुप्रीम है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, नागरिक की सर्वसत्ता संवैधानिक नहीं है, वास्तविक है। इसलिए इस नागरिक को उसकी शक्ति का एहसास, उसकी शक्ति का अनुभव होना चाहिए, प्रत्यय दिलाना चाहिए। ये लोक शिक्षण है, इस लोक शिक्षण को हमें करना है। और नागरिक का दूसरा काम भी यह है कि वो सारे नेताओं को, नेता भी एक मिडिल मैन ही होता है, तीन चार मिडिल मैन होते हैं ना, एक होता है मंदिर में पुरोहित, उसका फंक्शन, उसका काम इतना ही है कि भक्त और भगवान की भेंट ना होने दे। दूसरा मिडिल मैन होता है व्यापारी, दुकानदार, इसका फंक्शन, इसका काम इतना ही है कि उत्पादक और उपभोक्ता को मिलने न दे। और तीसरा मिडिल मैन है पॉलिटिशियन या लीडर, इसका फंक्शन क्या है, नागरिक को नागरिक से मिलने न दे, इनको एक दूसरे के नजदीक ना आने दे। इसलिए इन सारे नेताओं से, सारे राजनेताओं से, राजनैतिक पुरुषों से अब नागरिक को कह देना चाहिए, उनको सचेत कर देना चाहिए कि अब आइंदा एक बात को समझ लो, त्याग से अधिकार मिलता है, त्याग से पुण्य मिलता है, उपभोग से क्षीण होता है। ये सारे देवता स्वर्ग में पहुंच गए हैं त्याग के कारण, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। मैं छोटा था तो हमेशा पढ़ता था कि ये रावण, कंस, इनसे सारे देवता डरते थे। रामायण में तो लिखा है ना कि रावण के सिंहासन के हर एक पाए के नीचे देवता दबे हुए थे। देवताओं का शील ही है वो, क्योंकि उपभोग के लिए गए हैं। तो मैंने पूछा रामायणी पंडित से कि ये राक्षस तो पापी थे, इनको ऐसी इतनी शक्ति कहां से आई? तो पंडित तो पुस्तक के बाहर, जिसकी विद्या नहीं जाती उसका नाम पंडित है, तो वो कुछ कह नहीं सका। तो मेरे चाचा थे, वो बड़े पंडित नहीं थे लेकिन वेदांती थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। उनसे पूछा, कहे अरे तू पढ़ता है ना, आगे पढ़। तो आगे पढ़ने लगा जब पुराण, तो मुझे मालूम हुआ कि हर एक राक्षस ने बड़ी उग्र तपस्या की। ये रावण 9 सिर काट कर रख दिया और 10वां सिर काट कर रखने को तैयार हो गया। ये हिरण्यकशिपु, इन सब ने बड़ी बड़ी उग्र तपस्याएं की। मेरी समझ में आ गया, तपस्या से शक्ति मिलती है, उपभोग से क्षीण होती। ये जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, सबको यह सबक सिखाई। 30 साल तक कांग्रेस ने राज किया शक्ति क्षीण करने का ही कार्यक्रम की, भोग शक्ति क्षीण करने का कार्यक्रम है। जनता पार्टी को कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए, ए लीप फ्रॉम देयर लाइफ, वहां से सबक सीखें कि उपभोग से शक्ति क्षीण होती है, तप से शक्ति बढ़ती है। और ये जनता पार्टी को हम कौन सिखाने वाले, हम नागरिक जिन्होंने मतदान किया है, हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम उनको यह सबक सिखाएंगे, सिखाना चाहिए, आवश्यक है। इसके आगे एक तीसरी चीज है, नागरिक कौन। हमसे कहा गया है कि जो अंतिम व्यक्ति है वो नागरिक है, अंतिम व्यक्ति कौन है? वो रवि ठाकुर ने गाया है ना गीतांजलि में, तेरा सिंहासन कहाँ है? सबार पीछे सबार नीचे सकल आराधेर सकल आराधेर माझे। जिन्होंने सब कुछ खोया है, जो सर्वहारा हैं, सबसे नीचे हैं, सबसे पीछे हैं, वे वहाँ तेरा सिंहासन है। उस मनुष्य को उठाना है, उसको उसकी शक्ति का भान कराना है। वो भूल गया है कि शक्ति उसकी है। ये बहुत नाजुक काम है मित्रों, क्योंकि जो दबे हुए हैं उनकी संख्या अधिक है, जो दबाने वाले हैं उनकी संख्या कम है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां दबे हुओं की संख्या अल्प है, और वो है आदिवासी और हरिजनों का क्षेत्र। लोग कहते हैं कि अस्पृश्यों पर अत्याचार अब अधिक हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार अब अधिक हो रहे हैं। दूसरा कहता है कि तुम्हारे जमाने में भी हो रहे थे। इसका नाम है एब्यूजिंग द एडवर्सरीज अटर्नी। एक आदमी पर अदालत में चोर का मामला आया, तो जवाब में कहता है कि ये दूसरी पार्टी का वकील जो है वो भी चोर है। तो न्यायाधीश ने कहा उस पर दूसरा मुकदमा चलेगा, लेकिन तू तो अपनी सफाई पेश कर। अत्याचार पहले ज्यादा होते थे या कम होते थे ये सवाल है कि अत्याचार होते हैं ये सवाल है। ये पितृपक्ष में मैं गया में था भूदान के जमाने में, तो ट्रेन में जाने लगा तो गया म्यूनिसिपैलिटी का सेक्रेटरी बैठा था, मुझे समझा रहा था कि आपके हमारा बहुत तरक्की हो गई, प्रगति हो गई। क्या क्या हुआ? लास्ट ईयर 7.5% आदमी कॉलरा से मरे थे पितृपक्ष में, और इस साल 2.5%। अब मेरी बगल में एक स्त्री बैठी थी, नौजवान, वो सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ये कह रहा है और ये रो रही है? तो मैंने पूछा उसका भाई से कि ये क्यों रो रही है, तो बिगड़ा, मुझ पर नाराज होकर बोला कि ये सेक्रेटरी गधा है, 7.5% और 2.5% इसका होगा, लेकिन मेरी बहन का पति तो 100% मर गया। वो एक ही आदमी था, लेकिन ही वॉज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता का अंश नहीं था मित्रों। हर एक मनुष्य संपूर्ण मानव है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और हर एक मनुष्य जिसमें पूर्णांक होता है उसका नाम लोकतंत्र है। इसलिए एक एक मनुष्य के वोट है, देर इज नो कलेक्टिव वोटिंग। महात्मा गांधी के मत का जो कीमत है वो ही इस देश के शोहदे बदमाश के वोट की भी कीमत है। ये जो हर मनुष्य को विभूति मानने की तरकीब है, इसी का नाम लोकतंत्र है। हर मनुष्य की डिग्निटी, एक एक मनुष्य विभूति है। कितने हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, क्या इसका क्यों हिसाब लगाते हैं? एक हरिजन की भी अगर आंखें निकाल दी गई हैं, तो हमको क्यों नहीं लगता है कि मेरी आंख निकाल दी गई है? ये जब तक नहीं होता है तब तक लोकतंत्र में प्राण नहीं आएंगे। ये तो छोटे हैं, अल्प हैं, ये वर्ग संघर्ष भी करेंगे तो दब जाएंगे। वर्ग संघर्ष से डरने का कारण नहीं है, लेकिन ये इतने थोड़े हैं, इतने दबे हुए हैं कि वर्ग संघर्ष में ये ठहर नहीं सकेंगे। फिर क्या इनमें कोई आत्म प्रत्यय जागृत नहीं करना है? कोई प्रतिकार की शक्ति जागृत नहीं करनी है? अवश्य करनी है, लेकिन किस लिए? वर्ग निराकरण के लिए। वर्ग संघर्ष को इंटेंसिफाई नहीं करना है, लेकिन वर्ग संघर्ष से डरना नहीं है, यह अस्पृश्य और यह आदिवासी आपकी मेरी मेहरबानी पर नहीं जिएंगे, इनका जीवन आपकी मेरी छत्र छाया के नीचे नहीं होगा, इनका जीवन अपना होगा। इनमें शक्ति आनी चाहिए, जीवन की क्षमता आनी चाहिए। नाम कुछ भी दीजिए, लोग नामों से बहुत डरते हैं, और मार्क्स का दिया हुआ नाम हो तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसा डरने की कौन सी बात है, मार्क्स क्या इस भूमि का नहीं था? मित्रों, क्रांति स्वदेशी विदेशी नहीं होती, और क्रांति का पैगंबर न स्वदेशी होता है न विदेशी होता है। गांधी की बात अमेरिका के लोग मानते हैं तो आप क्यों खुश होते हैं? हमारा वेद मैक्स म्यूलर ने पढ़ा तो लोग बड़े खुश हुए। एक पंडित शास्त्री सनातनी भाषण दे रहे थे और मुझे सुख समझा रहे थे कि ये स्त्रियां शूद्र और अस्पृश्य वेदों के अधिकारी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर वेद पढ़ेंगे तो इनकी जीभ में कीड़े पड़ेंगे, और बाद में उस भाषण में वो क्या कहा भूल गए, और बाद में कहने लगे कि मैकडॉनल्ड ने और मैक्स म्यूलर ने और इन सब ने हमारे वेदों की कितनी स्तुति की है। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, उनकी जीभ में कीड़े पड़ गए होंगे, क्योंकि वो तो वेदों के अधिकारी नहीं थे। मित्रों, वेद जिस प्रकार स्वदेशी विदेशी नहीं है, बाइबल स्वदेशी विदेशी नहीं है, क्रांति भी स्वदेशी विदेशी नहीं है। लेकिन हर क्रांति के, हर पूर्व क्रांति के बाद हर उत्तर क्रांति को अपना मार्ग खोजना पड़ता है। वो मार्ग अगर आप नहीं खोजेंगे, रूस की और चीन की नकल करेंगे, तो पछताना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा घोड़े का पर एक सरदार था, उसके पास घोड़ा था, एक दफा गिर गया तो उसका घोड़ा होशियार था, उसने उसकी सीट से उसको पकड़ा और पीठ पर बैठा लिया और दवाखाने में ले गया। बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग निकले कि ऐसा घोड़ा है मानो सर्कस का हो। दूसरे दिन लोग उसके घर कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयां देने गए कि भाई कमाल का घोड़ा है, आप गिर गए तो उठाकर पीठ पर बैठा कर आपको दवाखाने में ले गया। वो सुनता रहा, कहा हाँ घोड़ा तो बहुत होशियार है, लेकिन एक बात हुई। क्या हुआ? The donkey took me to a veterinarian. वो मुझे मवेशियों के अस्पताल में ले गया गधा, मनुष्यों के अस्पताल में नहीं ले गया। तो क्रांति की नकल हम करेंगे तो यह होने वाला है। नकल से की क्रांति से हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। रूस जहां पहुंचा उससे आगे चीन पहुंचा, उससे आगे हमको पहुंचना है। हमें इन क्रांतियों की परिपूर्ति करनी है, नकल नहीं। मित्रों, क्रांति का अभी अंतिम दिन नहीं आया है, क्रांति के इतिहास का अंतिम शब्द नहीं लिखा गया है, वो किसी देश में नहीं लिखा जाएगा। हर देश को पिछली क्रांति से आगे बढ़ना है। चीन की क्रांति में एक कसर रह गई, क्रांति किसान की थी लेकिन किसान जवान बन गया, इसलिए क्रांति जवान की हुई, किसान की नहीं। अगला कदम क्या हो? क्रांति किसान की होगी, किसान जवान नहीं बनेगा। इसे लोग अहिंसक क्रांति कहते हैं। नाम बड़ा दे देने से क्या होता है? आप बड़े नाम से मत घबराइए, अहिंसा से भी न घबराइए, और इस शक्ति वर्ग संघर्ष से भी मत घबराइए। मतलब की बात समझ लीजिए। मतलब की बात यह है कि जो अंतिम मनुष्य है उसमें जीवन क्षमता आनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उसमें एक वो क्षमता आनी चाहिए कि वो मुकाबला कर सके। केवल ये शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, ये मानसिक मनोबल की भी बात है और ये आर्थिक शक्ति की भी बात है। उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और ये काम किसका है? ये काम यहाँ तो उनमें से बहुत कम दिखाई देते हैं, ये काम नौजवानों का है। क्यों है? जीवन उनका है। मैं कभी कभी कहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत खेद होता है कि 75 साल का जयप्रकाश नौजवानों का नेता है। जयप्रकाश के आउटसाइडर रूप को छोड़ दें तो, और आज तो मेरे एक मित्र नागपुर में कह रहे थे कि ये नेता सब बूढ़े ही बूढ़े हैं और ये तो छड़ी के बिना चल भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। ऐसे नेता इन नौजवानों के नेता कैसे बनेंगे? आज बड़ी दुरावस्था है, नौजवान होश में नहीं है। उसके दो नशे हैं, एक शराब और दूसरा सिनेमा। ये दो नशे सवार हो जाने के कारण वो होश में नहीं, वो तोड़फोड़ करता है। तंग किसको करता है? वाइस चांसलर को। डरता किससे है? गुंडे से। मास्टरों के हाथ की छड़ी गई, विद्यार्थियों के हाथ में आ गई। इससे क्रांति नहीं होने वाली है। क्रांति इंसरेक्शन नहीं है, क्रांति रॉयटिंग नहीं है। दंगा फसाद में से आतंक फैलेगा, क्रांति नहीं आएगी।